मैं दिवाकर यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री जय नारायण मिश्र पीजी कॉलेज लखनऊ, LLB थर्ड ईयर के 6th सेमेस्टर के छात्रों के सिविल प्रक्रिया संहिता सब्जेक्ट के थर्ड यूनिट में रेफरेंस टू हाई कोर्ट रिव्यू एंड रिवीजन एग्जीक्यूशन थर्ड यूनिट का पार्ट है, जिससे परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। आज टॉपिक है निर्देश। मैं निर्देश टॉपिक पर चर्चा कर रहा हूं, जो उनके लिए उपयोगी है। निर्देश रेफरेंस शब्द को सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 113 एवं आर्डर 46 में निर्देश के संबंध में प्राविधान किया गया है। निर्देश का अर्थात रेफरेंस का मुख्य उद्देश्य सबॉर्डिनेट कोर्ट अर्थात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उन मामलों में जिनमें अपील नहीं होती है विधि के प्रश्नों पर उच्च न्यायालय की राय प्राप्त करना है, जिससे ऐसी अधीनस्थ न्यायालय मामले का गलत निर्णय करने से बच जाए। निर्देश सामान्यतया अधीनस्थ न्यायालय उस स्थिति में करते हैं जहां न्यायालय को विधि के प्रश्न पर स्वयं को संदेह हो और उस पर उच्चतर न्यायालय अर्थात हायर कोर्ट का पहले से कोई निर्णय नहीं हो। इस प्रकार का निर्देश मामले के सुनवाई के दौरान परंतु निर्णय से पूर्व किया जाता है। निर्देश क्या है? व्हाट इज रेफरेंस? निर्देश एक ऐसा फॉर्मल एप्लीकेशन या औपचारिक आवेदन है जो एक सबॉर्डिनेट को अर्थात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय को किसी विधि या अधिनियम की लीगैलिटी वैधानिकता की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। न्यायालय विधि द्वारा बाध्य होते हैं तथा उन्हें विधि के अनुसार ही अपना निर्णय देना होता है। अतः जब कभी विधि की वैधानिकता के बारे में लीगैलिटी के बारे में चाहे वह प्रथागत विधि हो अथवा अधिनियम अध्यादेश आदि के रूप में अन्य कोई विधि का प्रश्न अथवा संदेह उत्पन्न हो जाए तो वाद के अर्थात मामले के अंतिम निपटारे के पूर्व उसके उचित समाधान आवश्यक हो जाते हैं। वहाँ इस संदेह को दूर करने के लिए सबॉर्डिनेट कोर्ट उच्च न्यायालय को एक आवेदन भेजता है। इसी आवेदन को निर्देश कहा जाता है। उच्च न्यायालय को निर्देश सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 113 तथा आदेश 46 में इसके बारे में प्राविधान समाविष्ट हैं। धारा 113 के अनुसार उन शर्तों और मर्यादाओं के अधीन रहते हुए जैसा कि निर्धारित किया जाए कोई न्यायालय मामले का कथन करके उसे उच्च न्यायालय की राय के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा तथा उच्च न्यायालय उसे ऐसा आदेश दे सकेगा जैसा कि वह ठीक समझे। परंतु जहां न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि उसके साथ लंबित मामले में किसी अधिनियम अध्यादेश विनियम अथवा किसी एक्ट ऑर्डिनेंस या विनियम में इंक्लूड अर्थात समाविष्ट किसी उपबंध की विधि मान्यता के बारे में ऐसा प्रश्न अंतर्वलित है जिसका डिटर्मिनेशन अर्थात अवधारण उस मामले को निपटाने के लिए आवश्यक है और उसकी यह राय है कि ऐसा अधिनियम अध्यादेश विनियम या उपबंध अविधिमान्य या अपरिवर्तनीय है, किंतु उस उच्च न्यायालय द्वारा जिसके वह न्यायालय अधीनस्थ हैं या उच्चतम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित नहीं किया गया है, वहां न्यायालय अपनी राय और उसके कारणों को वर्णित करते हुए मामले का कथन करेगा और उसे उच्च न्यायालय की राय के लिए निर्देशित करेगा। रेफरेंस के लिए इसेंशियल कंडीशन यानी कोई सबॉर्डिनेट कोर्ट जब कोई रिफरेंस भेजेगा तो उसके लिए क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्देश के लिए हाई कोर्ट को जब कोई निर्देश भेजा जाता है तो उसके लिए निम्नलिखित शर्त होनी आवश्यक है। पहली शर्त है, जहां ऐसे न्यायालय के समक्ष कोई वाद जिसमें डिक्री के विरुद्ध अपील नहीं होती या अपील जिसमें पारित डिक्री के विरुद्ध द्वितीय अपील उच्च न्यायालय को नहीं होती या निष्पादन की कोई कार्रवाई लंबित है। दूसरा पॉइंट, ऐसे वाद अपील या निष्पादन की कार्रवाई में विधि या विधि का बल रखने वाली किसी रूढ़ी से संबंधित प्रश्न उत्पन्न होता है। पॉइंट थ्री, वह न्यायालय जो वाद का विचारण कर रहा है या अपील की सुनवाई कर रहा है या डिक्री का निष्पादन कर रहा है, वह स्वयं ऐसे प्रश्न पर युक्तियुक्त संदेह रिजनेबल डाउट करता है। विधि के ऐसे प्रश्न जिस पर न्यायालय को संदेह है को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग, वे प्रश्न जिनका संबंध किसी एक्ट, आर्डिनेंस या विनियम की वैधता से है, और दूसरा पॉइंट अन्य प्रश्न। जहाँ तक अन्य प्रश्न का संबंध है, उसमें किसी सबॉर्डिनेट कोर्ट द्वारा उच्च न्यायालय को निर्देश ऑप्शनल है, ऐच्छिक है। परंतु जहाँ किसी अधिनियम, अध्यादेश, विनियम की वैधता का संबंध है, वहाँ निर्देश करना आवश्यक है और इस धारा के प्राविधान आदेशात्मक हैं। किंतु ऐसा करने के लिए भी निम्नलिखित शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। पहला शर्त है, मामले के निपटारे के लिए प्रश्न का विनिश्चय या अवधारण आवश्यक है। दूसरा शर्त है, अधीनस्थ न्यायालय के विचार में आक्षेपित अधिनियम, अध्यादेश या विनियम अधिकारातीत है, अल्ट्रा वायरस है। नंबर तीन, उच्चतम न्यायालय द्वारा या उच्च न्यायालय द्वारा जिसके अधीन अधीनस्थ न्यायालय कार्य करता है, ऐसा कोई अविधारण डिटर्मिनेशन नहीं है कि ऐसा अधिनियम, अध्यादेश या विनियम अधिकारातीत है। इन्हीं सब शर्तों का जिसके अधीन एक सबॉर्डिनेट कोर्ट उच्च न्यायालय को निर्देश करता है, कोलकाता उच्च न्यायालय ने राणा देव बनाम लैंड एक्विजिशन जज AIR 1971 के मामले में कुछ गाइडलाइन दिया है। वे गाइडलाइन निम्नलिखित हैं। प्रथम, सामान्यतया निर्देश का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय का है। द्वितीय, निर्देश का अधिकार विवेकी है, इस अर्थ में कि न्यायालय एक मामले का कथन करके उच्च न्यायालय की राय के लिए निर्देश कर सकता है। तृतीय, अधीनस्थ न्यायालय को इस बारे में संतुष्ट होना है कि उसके समक्ष जो मामला लंबित है उसमें किसी अधिनियम की वैधता का प्रश्न अंतर्वलित है। चौथा पॉइंट, अधीनस्थ न्यायालय को इस मामले में संतुष्ट होना है कि अधिनियम की वैधता के प्रश्न का अवधारण मामले के निपटारे के लिए आवश्यक है। पांचवा पॉइंट, अधीनस्थ न्यायालय के विचार में ऐसा अधिनियम अविधिमान या अपरिवर्तनीय है। छठा पॉइंट, अधीनस्थ न्यायालय के विचार में अविधिमानता का अपरिवर्तनीयता की घोषणा का अवधारण या तो उच्च न्यायालय के द्वारा जिसके अधीन वह कार्यरत है या उच्चतम न्यायालय के द्वारा नहीं किया गया है। यदि ये शर्तें पूरी हो जाती हैं तो अधीनस्थ न्यायालय का अधिकार विवेकी न होकर आदेशात्मक है और अधीनस्थ न्यायालय मामले का कथन करेगा, उस पर अपना विचार व्यक्त करेगा और उसके लिए कारण भी देगा। ऐसी अवस्था में अधीनस्थ न्यायालय को अपना विचार या मत अभिव्यक्त करना होगा कि क्या अधिनियम अविधिमान्य है या अप्रवर्तनीय है। जब तक कि अधीनस्थ न्यायालय इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता है, वह निर्देश करने के लिए बाध्य नहीं है। निर्देश संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख आर्डर 46 में किया गया है और आर्डर 46 के रूल 1 से लेकर रूल 6 तक में निर्देश संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है और बताया गया है कि निर्देश करते समय न्यायालय को कौन कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें आर्डर 46 रूल 1 में स्पष्ट रूप से प्राविधान है कि ऐसा कोई निर्देश सबॉर्डिनेट कोर्ट द्वारा या तो अपनी स्वपेणा पर सो मोटो या किसी पक्षकार के आवेदन पर किए जाने चाहिए। नंबर 2, निर्देश पर रूल 2, निर्देश पर आदेश लंबित रहने के दौरान वाद को या तो रोका जा सकेगा या निर्देश होने वाले आदेश पर आश्रित कोई टिकरी पारित की जा सकेगी, किंतु किसी आदेश का निष्पादन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उस निर्देश पर उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रति प्राप्त न हो जाए। रूल 3, यदि पक्षकार ऐसी इच्छा प्रकट करें तो उच्च न्यायालय उन पक्षकारों को सुनेगा और उसके बाद उस प्रश्न का विनिश्चय करके निर्णय की एक प्रति उस सबॉर्डिनेट कोर्ट को भेजेगा और वह न्यायालय तदनुसार मामले का निपटारा करेगा। रूल 4, उच्च न्यायालय के निर्णय के लिए किए गए निर्देश के फलस्वरूप जो खर्चे होंगे वे वाद के खर्चे होंगे। रूल नंबर 5, आर्डर 46 रूल 5 के अंतर्गत जहां कोई मामला इस आदेश के नियम 1 अथवा धारा 113 के परंतु के अंतर्गत उच्च न्यायालय को निर्देश किए जाए वहां उच्च न्यायालय मामले को संशोधन के लिए लौटा सकेगा या निर्देश करने वाले न्यायालय की टिकरी अथवा आदेश को परिवर्तित कर सकेगा, निरस्त कर सकेगा या आपात कर सकेगा अथवा ऐसा कोई आदेश दे सकेगा जैसा कि वह उचित समझे। रूल 6, निर्णय के पहले किसी भी समय वह न्यायालय जिसमें वाद दायर किया गया है लघु वादों में अधिकारिता से संबंधित प्रश्नों को जिनमें वह संदेह करता है चाहे वह लघु वाद न्यायालय द्वारा प्रसंगे है या नहीं हाई कोर्ट को निर्दिष्ट कर सकेगा। धन्यवाद।